الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں سب سے بڑی طاقت کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین مخلوق کے لیے بڑی طاقت کا مرکز کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین مخلوق کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین بنانے کی محنت یہ کلمے والی محنت کہلاتی ہے، یعنی کلمے کا یقین، کلمے میں جو مضمون پایا جاتا ہے اس کا یقین، یہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو، پر ہم محنت کریں، اس کو راسخ کریں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں کچھ باتیں تجھے سکھلاتا ہوں، ان کو اچھی طریقے سے یاد رکھ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سب پہلے ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ پاک کو یاد رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، یعنی تنہائی میں، لوگوں میں، مسجد میں، گھر میں، بازار میں، آفس میں، کہیں بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے پائے گا۔ اللہ کہاں ہے؟ کسی دور والے کو تو نہیں پکارا جا رہا، کسی دور والے کو تو یاد نہیں کیا جا رہا، آہستہ سے بولیں تو بھی فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا يَخْفَى، سر اور خفی دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جتنا بھی بندہ آہستہ بولے، سجدے کے اندر آدمی تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العالی، اتنی آہستہ پڑھتا ہے کہ بازو والے مصلی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ اس کو، اور اللہ پاک اس کی مناجات سن رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح کو سن رہے ہوتے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کہاں ہے تو سامنے ہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تو ہوں کہیں اور اللہ نہ ہو وہاں، ایسا نہیں ہو سکتا، مخلوق تو ہو اور اللہ نہ ہو، مخلوق خود تو دیکھے کسی چیز کو اور خالق اس کو نہ دیکھ رہا ہو، ایسے کیسا ہوگا؟ مخلوق سنے کسی چیز کو اور خالق نہ سنے اس کو، ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی مخلوق ہو، مخلوق کا ہونا خالق کا نہ ہونا ایسا نہیں ہو سکتا، مخلوق کا دیکھنا خالق کا نہ دیکھنا ایسا نہیں ہو سکتا، مخلوق کا سننا خالق کا نہ سننا ایسا نہیں ہو سکتا، مخلوق کا جاننا اور خالق کا نہ جاننا ایسا نہیں ہو سکتا، کہ لوگوں کو تو پتہ ہو اور خالق کو ہی نہیں پتہ ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ اس لیے فرمائے احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ، وہ سب سے قریب ہے، سب کے قریب ہے، سب سے قریب ہے، ہر ایک سے اس کی ذات سے زیادہ قریب ہے، وہ سب کو محیط ہے، الا انہ بکل شیء محیط، وہ ہر شے کو محیط ہے، ہم بھی شے ہیں، ہم کو بھی محیط ہے، محیط میں نے گھیرا ہوا، और हमारे अंदर लाखों करोड़ों अशिया हैं, उन सब की मोहित हो। हम एक चीज़ थोड़ी है, तो करोड़ों चीज़ों का मजमू है, वो हर शेय के मोहित है। तो अल्लाह तबारक व ताला मोहित हैं, अल्लाह तबारक व ताला करीब हैं, अल्लाह तबारक व ताला साथ हैं, अल्लाह तबारक व ताला जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व ताला मौजूद हैं, अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह देखते हैं, अल्लाह जानते हैं। फरमाया फ़ज़लल्लाह तजीदु तिजारा, अल्लाह को याद रखो तो अल्लाह को अपने सामने पाओ। अल्लाह को ऐसे याद करने की मशक करना है मेरे भाइयों, कि अल्लाह तबारक व ताला की ये जो सिफात हैं, ये सिफात हमें याद रहें, क्योंकि हमारे याद रखने से वो हैं वरना नहीं है वैसा नहीं है। हम याद रखें तो भी वो इन सिफात के साथ हैं, हम याद ना रखें तो भी वो इन सिफात के साथ हैं। कसूर हमारा है कि हम याद रखते हैं कि नहीं रखते, हमारे याद न रखने की वजह से वो नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, वो तो है। और हम ईमान लाए अल्लाह पर उनकी सिफतों के साथ, आमंतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही ही वो सिफाती ही, ईमान लाया हमें अल्लाह पर जैसा कि वो है उनके नामों के साथ उनके सिफतों के साथ। तो अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर मैं ईमान लाया जैसा कि वो हैं, वो कैसे वो हैं हम इसको जानना ही नहीं चाहते, हम इस पर मेहनत नहीं कर रहे। अगर हम इस पर मेहनत करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात आली के साथ में हमारा ताल्लुक मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा। जैसे अल्लाह पाक हमें याद कर रहे हैं, हम अल्लाह को याद करने वाले हो जाएं तो फिर अल्लाह पाक मजीद हमें याद करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक हमें भूल जाएं ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह भूलता ही नहीं। तो मगर हम जब याद करते हैं तो फिर अल्लाह पाक की याद करने की शान अलग होती है हमको। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम अपने लोगों में याद करते हो मैं तुमसे बेहतर मजमू में याद करता हूँ, फरिश्तों में याद करता हूँ। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे हैं हज़रत इब्न अब्बास, बड़ी उम्र के नहीं हैं ये बताया, लेकिन ज़रूरत सबक याद करने की बड़ों को भी पेश आती है, छोटों को भी याद है। अब हम लोगों ने याद नहीं रखा हुआ है तो हमें याद करना है कि अल्लाह तबारक व ताला को याद रखेंगे तो अल्लाह पाक को सामने पाएंगे। पहले बुजुर्गान दीन इसकी मशक कराते थे, अल्लाह तबारक व ताला के सामने होने की मशक करो, याद रखो कि अल्लाह पाक है, अल्लाह देख रहा है। कुरान पाक में अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा, क्या नहीं जानता बंदा इस बात को कि अल्लाह पाक उसको देख रहा है। काला शान हो मेरे दोस्तों, देखते भी हैं जानते भी हैं, मश्क की बात है। एक साहब एक बुजुर्ग के पास गए खिदमत में, और वो बुजुर्ग उनको जरा जल्दी ज़्यादा चाहने लग गए, दूसरे लोगों को थोड़ी सी जलेसी हो गई कि साहब इसको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, अभी नया नया आया है हमें नहीं चाह रहे। तो उन्होंने उसको बताना चाहा कि मैं इनको ज़्यादा क्यों चाहता हूँ। तो फरमाया एक मरतबा अपने खादिमों से कहा, अपने शागिर्दों से कहा कि भाई हमारे पास एक प्रोग्राम है आज, हम ये चाह रहे हैं कि हर कोई जो है ना एक एक मुर्गी ज़ुबा करके लाऊं, बनाएंगे सब मिला के। और फिर ये सबको हिदायत दे दी कि जो है मुर्गी को ज़रा स्पेशल तरीके पर ज़ुबा करना है, ऐसा ज़ुबा करना है कि कोई देखे नहीं, कोई ना देखे ऐसी जगह जाके ज़ुबा करके लाओ, जल्दी जल्दी लाओ तुम्हें काम है। तो जितने खुदाम थे वो सआदतमंद समझ के, जाहिर के पोल्ट्री फार्म का तो ज़माना था नहीं, वो एक एक मुर्गी उन्होंने हासिल किए, वहाँ से ले जाके ज़ुबा किया, अब कोई जंगल में ले जाके ज़ुबा किया, कोई कमरे के अंदर बंद करके ज़ुबा किया, कोई कहीं और कहीं और, सब जगहों पर जाके अपनी अपनी मुर्गियाँ ज़ुबा करके लाए। अब ये जो नया नया मुरीद था, नया शागिर्द था जिसको हजरत बहुत चाहते थे, वो थोड़ी देर के बाद आया और उसने ज़ुबा ही नहीं किया। अब ये बहुत ज़्यादा उसको उन्होंने जाहिर की नाराज़गी जाहिर की, उस पर जाहिर करने वाली जाहिर की बस खाली, यानी कि ये क्या बात है, सब सब हो गए, सब तैयार करके आ गए हैं, और तुम अभी तक मुरली तक दुआ करके नहीं लाए, कब होगा काम, अधूरा काम रह जाएगा। नाराजगी का इजहार किया कि तुम कैसे आदमी हो, ये हो वो हो। कहने की हजरत आपने क्या फरमाया था? तो कहने की मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक एक मुर्गी जुबा करके लाओ और ऐसी जगह जुबा करके लाओ जहाँ पे कोई ना देखे, क्योंकि स्पेशल मामला है यहाँ पे, नहीं देखे जैसा जुबा करने का है। तो बोले हजरत यही तो पंचायत हो गई। बोले सारी जहाँ मैं जाता था आपने तो ये नहीं कहा था कि इंसानों में से कोई ना देखे, कोई और मखलूक में से कोई ना देखे, आपने कोई ना देखे। अब मैं जहाँ जाता था वहाँ यही मिलता था मुझे कि कोई मुझे देख रहा है और वो अल्लाह पाक है। अंधेरे में भी गया तो बेटा अंधेरे में भी अल्लाह देख रहा होता है। झाड़ के पीछे गया, दरख्तों के पीछे, पत्थरों के पीछे, वहाँ जाके मैंने देखा, सोचा कि मैं या तो नहीं देख रहे अल्लाह पाक, या तो देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक तो सभी जगह देख रहे होते हैं। मुझे कोई जगह ऐसी मिली नहीं जहाँ मैं इस मुर्गी को जुबा कर सकूँ, काट सकूँ। तो इसमें आपने की जो शर्त थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं सोचा मुर्गी भी जाएगी, शर्त भी पूरी नहीं होगी, फायदा क्या, इसलिए मैं जुबा ही नहीं कर सका। वो बुजुर्ग ने फरमाया कि बस भाई हो गया काम। इन लोगों को यही बताना था कि तुम्हारे ध्यान बनने में इनके ध्यान बनने में ये फर्क है। इस वजह से मैं चाह जिसका जो आदमी काम करता है उसको चाहा जाता है, जो काम किया करता है उसको चाहा जाता है। तो मैंने देखा मैंने देखा इस बंदे ये बंदा है तो नया लेकिन दिमाग इसका जल्दी ठहर गया, इस्तेदार नसीब हो गया उसको, नस्बत एहसान उसको हासिल हो गई कि भाई अल्लाह पाक मुझे देख रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला देख रहे थे मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिंदा है, एक ऐसी पिछली मालूम की कोई चीज़ नहीं है, है वो मतवक्कल अल हय्य लज़ी ला यमूत, उस जिंदा पे भरोसा करो जो मरता नहीं है। अल्लाह पाक फरमा रहे मतवक्कल अल हय्य, उस हय ज़ात पर, उस जिंदा ज़ात पर भरोसा करो जो कि ला यमूत, मरती नहीं है। वो कुदरत वाले हैं, वो ताकत वाले हैं, वो पालने वाले हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, वो करीब हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो जान रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यकीन होना है, इहफ़िज़ुल्लाह तजिदहु तिजाहक। फिर फरमाया इदा सअलता फसअलिल्लाह, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, वह इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। कोई मसला पेश आ जाए, मदद की जरूरत है तो अल्लाह से मांग, कोई चीज ही नहीं है मांगना है, अल्लाह पाक से मांगो। इदा सअलता फसअलिल्लाह वही दस्तान तफस्तईन बिल्लाह। फिर उसके बाद फरमाया वालम अंदर उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशय, इस बात को याद रखो कि पूरी उम्मत मिलके जमा हो जाए इस बात पर कि तुम्हें नफा पहुंचाए, नहीं नफा पहुंचा सकते मगर वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। पूरे मिलके जमा हो जाए, कोई एक दो नहीं, सब मिलके तुम्हें नफा पहुंचाना चाहें, नहीं नफा पहुंचा सकते मगर वही जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। नहीं अनफाऊ का इल्ला बिशयइन कद कतबहु अल्लाहु लक वलव इजतमअउ अला यदुर्रुका बिशय, और अगर सारे मुत्तफिक हो जाएं कि तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, दो दुश्मन पराए नजर आने वाले, नजर नहीं आने वाले, इंसान शयातीन जिन्नात सब जमा हो जाएं कि तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, नहीं नुकसान पहुंचा सकते मगर वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय फरमा, तुम पर तय फरमा दिया। मतलब इज्तमाउ अला यदुर्रुका बिशय लन यदुर्रुका इल्ला बिशयइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक, जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए तय फरमा दिया नुकसान वही है, वही मिलेगा। रुफियातिल अक़लाम, तुम्हारे नफा नुकसान के निज़ाम को लिख कर कदम उठ चुके हैं जिस जगह पर लिखा जाता है उससे। वजह फतेह सहूफ, सहीफे खुश्क हो चुके, तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात आली का यकीन बनाकर ईमान वाले से ये चाहा जाता है कि किसी मखलूक से तमा ना रहे, किसी मखलूक का खौफ और रौब ना रहे, मखलूक से मरूबियत ना रहे, मखलूक से मखलूक का रौब ना रहे, डर ना रहे। जब तक अल्लाह नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। हर जमाने में मुसलमान को डराया जाता है लेकिन वो यही देखने के लिए होता है कि उसका ईमान कैसा है। डरता है तो फिर परेशानी आ जाती है, परेशान करने वालों को मुसल्लत कर दिया जाता है, नहीं डरता है तो परेशान करने वाले हटा दिए जाते हैं। अल्लाह पाक का निज़ाम है, नब्लुवन्नकुम बिशय्इन मिनल खौफ, खौफ से हम तुम्हें आजमाएंगे। पूरी मखलूक से अकली एतबार से कोई तमा नहीं रहना और अकली एतबार से कोई उम्मीद नहीं रहना। कुछ तबीयी चीजें हुआ करती हैं, गैर इख्तियारी तौर पर तबीयत के अंदर होता है, वो चीज का आदमी जिम्मेदार नहीं होता। मखलूक का डर नहीं रहना, बल्कि बोले तो तबीयी तौर पर तो डर होगा। अब हमने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना बोले। अगर यहाँ पे सांप गिर गया तो न मौलाना साहब बाकी रहते, न वो तकलीफ रहता, ना सामे रहता, सब उठ के भाग जाते, क्योंकि वो तभी खौफ है, वो अकली तौर पर नहीं है। तभी खौफ तो होना ही चाहिए, तभी खौफ का होना हवास के सलामत होने की अलामत है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम भी सांप अपनी ही डंडे को सांप बनता हुआ देख के डर गए थे। तो ये वजह नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन कुछ गड़बड़ था, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी का यकीन थोड़ी गड़बड़ होता है। मूसा अलैहिस्सलाम अगर उस वक्त ना दौड़ते, ना भागते, ना डरते तो इस बात का अंदेशा हो जाता कि मूसा अलैहिस्सलाम होश में नहीं थे। और जो होश में नहीं तो पता नहीं अल्लाह ने क्या कहा, इसने क्या सुना। नबी जब नबुवत दी गई उनको तो अल्लाह पाक ने क्या कहा, इन्होंने क्या सुना, अल्लाह ने क्या दिखाया, इन्होंने क्या देखा, ये सवाल पैदा हो जाता। इसलिए उनके हवास बिल्कुल सही सालिम है, जिस चीज का असर लेना चाहिए था उसका असर ले रहे हैं। मशायर पूरे काम कर रहे हैं, एहसास पूरे काम कर रहे हैं। ये दलील है मूसा अलैहिस्सलाम के सांप को देख के भागने की। वो बिल्कुल जो कुछ उसके अलावा उन्होंने देखा किया, जो बात है वो सब बिल्कुल सही हुई। इसी वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात हुजूर के बारे में फरमाई, एक बात ये फरमाई कि वो बिल्कुल सहीहुल हवास थे वहां पर। आलम आखिरत में जाने की वजह से, आसमानों में जाने की वजह से, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जाने की वजह से होश खो गए हों, पता ही नहीं चल रहा हूं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वैसा नहीं था। माजाकल बसरु व मा तगा, न तो निगाह ने निगाह टेढ़ी हुई, न तो आपने अपनी निगाह हटाई है, न उसने न तो गलत देखा है, उसे बिल्कुल सही देखा है। आपके हवास पूरे काम कर रहे थे, सही हवास का। तो तभी तौर पर आदमी किसी से होप भी कर लेता है, तभी तौर पर आदमी किसी से डर भी जाता है। लेकिन यह कि यह पता होना चाहिए कि जब तक अल्लाह ने हमारा ये यकीन बनना है वो ये है कि जब तक अल्लाह तबारक व ताला ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। नफा की लेन से हो या नुकसान की लेन से, इज्जत की लेन से हो या जिल्लत की लेन से, कारोबार की लेन से चलने, कारोबार चलने की लेन से हो या नहीं चलने की लेन से, जॉब की लेन से हो या किसी और लेन से, बीवी बच्चों के साइड से हो, किसी भी साइड से, अपनी सेहत के एतबार से, खुशी और गम के एतबार से, अल्लाह तबारक व ताला का एक निज़ाम है। अब जब अल्लाह तबारक व ताला का ये निज़ाम है तो जिस कंडीशन में, जिस हालत में मैं रखा हुआ हूँ, वो हालत अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मेरे लिए तय की गई। मेरा अपना फर्ज ये बनता है कि उस हालत में मैं अल्लाह तबारक व ताला से राजी रहूं। इसलिए अल्लाह ताला के जो हकूक हैं, उन जैसे अल्लाह ताला का हक तौहीद है, शिर्क नहीं कर सकते अल्लाह के साथ, जैसे अल्लाह तबारक व ताला का हक इबादत है कि जो बंदगी उनकी करनी है वो करनी है उनको, ऐसे अल्लाह तबारक व ताला का हक तफवीज है और तस्लीम है, अपने आप को उनके हवाले करना कि वो जो फैसला करें आपको लेना ही पड़ेगा, आप खुश हों या ना हो। और जो फैसला उनकी तरफ से आए उसको मान लेना। तफवीज का मतलब अल्लाह तबारक व ताला के हवाले करना, तस्लीम का मतलब जो उधर से फैसला हो उसको मान लेना, पसंद वाला हो या ना पसंद वाला हो, मर्जी का हो या ना मर्जी का हो, खुशी का हो या शिकायत नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला के फैसले पर शिकायत नहीं करना। तकलीफ हुई तो रो सकते, दर्द हो रहा तो रो सकते, मगर ये कि साहब हमारे लिए ऐसा फैसला कैसा कर दिया, नहीं कर सकते, उनका हक है। वो अपनी मखलूक में जो चाहे तसरुफ करें। आप लकड़ी खरीद के लाते हैं, अब जन हमारा उसको खूटी बनाना है, उसका दरवाजा बनाना है, आप उसको आरे के नीचे रख के चलाते रहते हैं, उसको काटते रहते हैं, कुछ बोलती क्या कभी। वो जमीन खरीद लेते हैं, किसी जगह पे तारो खाना बना दिया, किसी जगह पर डाइनिंग रूम बना दिया, किसी जगह लिविंग रूम बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं बना किया उसने कभी। तो हम भी उनके मखलूक हैं, हम उनके ममलूक हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला जो भी फैसला करेगा बंदों पर, उस फैसले से राजी होना ये उनका हक है। और बहुत मुजाहिदा करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे भी आपको भी। ऐसा बोलने से तो हो जाने वाली नहीं है ये चीज़, ये चीज़ मेहनत तलब है। एक जहन बनाना पड़ता है ईमान का, ईमानियात का। अब ताला से एक मोहब्बत वैसी पैदा करनी पड़ती है कि अल्लाह तबारक व ताला की जो अल्लाह पाक की तरफ से जो तकदीर तय होती है बंदे के लिए, वो बंदा खुशी खुशी उसको झेल जाए। और जिसको दुनिया में ये चीज़ मैसर हो गई उसकी कामयाबी है बस। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ आजमाइश में डाला जाएगा बंदे को। कुछ अच्छी चीज़ें उसके लिए तय हैं, नियमतें तय हैं, कुछ तकलीफें इसके लिए तय हैं। बादशाह हो, अमीर हो, कोई हो, अमेरिकन हो, गैर अमेरिकन हो, काला हो, गोरा हो, कोई सा हो, नेक हो या बद हो, यहाँ तय है कुछ खुशियाँ और कुछ सदमे हर बंदे के लिए। ये नहीं हो सकता कि बंदे को जो है सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, और ये भी नहीं हो सकता कि बंदे को सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ मिले। तकलीफ में आदमी ऐसा महसूस करता है कि यार मुझे तो कभी खुशी मिली नहीं बोलती। जैसे खुशी के वक्त में आदमी सोचता है कि मुझे तो कभी कोई सदमा हुआ ही नहीं। आदमी का मिजाज ये है कि एक चीज़ के वक्त में दूसरी चीज़ भूल जाता हूँ। बाकी ये है कि ये तय है, और ये कहे के लिए अल्लाह तबारक व ताला की का एक निज़ाम है, वो ये है कि बंदे को कुछ तकलीफ़ों से और कुछ नियमतों से मैं आजमाऊँगा। सब तकलीफ़ें दे दूंगा ऐसा भी नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं इतनी तकलीफ़ें हैं, पता नहीं किसी का और को इतनी तकलीफ है क्या नहीं। एक साहब ने अपने शेख को लिखा किताब, ये बीमारी, ये बीमारी, ये मुसीबत, ये मुसीबत, ये मुसीबत, ये मुसीबत, मैं तो तंग आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, तंग आ चुका हूँ। बोलते तो उन्होंने, हजरत ने उनको जवाब में लिखा कि दुनिया में इतनी ही मुसीबतें हैं या और भी हैं। या दवाखाने को जाके देखो अगर बीमारी के लेंस है तो, और दूसरे लोगों को देखो, बोले नहीं बेशुमार मुसीबतें परेशानियां हैं, हजार हजार लाखों करोड़ों हैं। तो उसके बाद उन्होंने जवाब में लिखा कि नहीं मुसीबतें तकलीफें तो हजारों लाखों हैं इसके अलावा भी। फरमाया वो जो हजारों लाखों मुसीबतें हैं वो भी अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम क्या कर सकते हो। कहने लगे कुछ नहीं कर सकता, कुछ ताकत है क्या? तो नहीं है। कुछ कर सकते तो नहीं कर सकते, फिर अभी खामोश रहे ना, जो है उसके ऊपर सब्र कर लो बस। कुछ चीजें कुछ तकलीफें तय है बंदे के लिए। अब जाहिर है कि तकलीफ बोलते हैं उसको कि उसमें सदमा होता है, तकलीफ होती है, अजियत पहुंचती है, उसमें सब्र का इम्तिहान है, उसमें बंदगी का इम्तिहान है, उसमें बंदे की दुम दबाई जाती है, टेंडवा मोड़ा जाता है कि इसका गुरूर खत्म हो, इसके अंदर आजिजी आ जाए, इसके अखलाक दुरुस्त हों, हिमाकत खत्म हो जाए, नहीं तो इन्हें अनारबुकुम अला से नीचे उतरता ही नहीं। थोड़ा सा भी अगर आराम मिल गया और थोड़ी इज्जत मिल गई और सब वाह 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 होने लगी, आसमान चौथे आसमान पे दिमाग। तो अल्लाह तबारक व ताला इसको जो है पकड़ के लेके आते हैं नीचे। तो कुछ मुसीबतें तय हैं बंदे के लिए, तकलीफें तय हैं, और उसमें सब्र का इम्तिहान है, और कुछ नियामतें तय हैं, कुछ नियामतें तय हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को खुशी ना मिले, जरूर नियामतें मिलेंगी, उसमें शुक्र का इम्तिहान है। तो ये जो निज़ाम है हमारा कि भाई फुर्सत मिले, टाइम हो, मसरूफियत हो, कुछ तकलीफें हो, कुछ आराम हो, कुछ पैसा मिल जाए, ये हो, इन सब चीज़ों से ताल्लुक हमारे यकीन बनाने का नहीं है कि हम यकीन बनाने की जो मेहनत है हम जब करेंगे, जब थोड़ा सा इधर से फुर्सत होगी, हम जब करेंगे जब ये काम हो या ये हो जाएगा, जब करेंगे जब वो काम हो जाए, वैसा नहीं है मसला। जिस हालत से हम गुजर रहे हैं उस हालत में अल्लाह पाक के हुक्म को पहचानना है, और उस हालत में अल्लाह तबारक व ताला के अल्लाह तबारक व ताला के दीन की मेहनत करना है, अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, बंदगी करनी है। नमाज का वक्त आ गया, नमाज पढ़नी है, नमाज बगैर वजू के नहीं होती। सर्दी है तो भी वजू करनी है, वजू करना है, गर्मी है तो भी, रात छोटी है तो भी करना है, रात लंबी है तो भी करना है, करना ही करना। वक्त जल्दी आता तो भी करना है, नमाज वक्त भी पढ़ना है, वक्त देर में आता है तो भी नमाज वक्त पे ही पढ़ना है। वक्त देर में आ रहा बल्कि नमाज वक्त से जल्दी नहीं पढ़ सकते आप, मुजाहिदा है, इम्तिहान उसी का है। और जितनी तकलीफ जिस चीज में पेश आ जाएगी उसका अजर सवाब वैसे ही होगा। मिसबाहुल वुदू अल मकारह, नागवारी के बावजूद जो आदमी वजू करता है कामिल, उसके तो दर्जे बुलंद हो जाते हैं, हालांकि वजू ही कर रहा है। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, बार बार मस्जिद की तरफ कदम डालना, अल्लाह तबारक व तआला को इतना प्यारा है कि हर हर कदम पर गुनाह माफ होता है, हर हर कदम पर दर्जे बुलंद किए जाते हैं। इंतजार उस सलात बाद सलाह, कुछ काम नहीं है मस्जिद में बैठे हुए नमाज के इंतजार में, अल्लाह पाक को इस पर प्यार आ जाता है, अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ बैठो भाई चलो। और अगर नमाज का वक्त बहुत देर है हम जा रहे हैं तो जहनी तौर पर कल्बी तौर पर इंतजार करना भी उलमा ने फरमाया कि उसी में शामिल है। जैसे फजर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर तक तो नहीं बैठते, मगर ये आदमी के दिल में शौक हो कि जोहर का वक्त होते फिर मुझे आना है आऊंगा, शौक हो मुसीबत ना हो। नमाज के वक्त नमाज, रोजे के वक्त रोजा, ज़कात के वक्त ज़कात, हज के वक्त हज, और दीन की मेहनत के मौके पर दीन की मेहनत, जो काम अल्लाह पाक दे दे। दीन की मेहनत के वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि मैं कैसे जाऊंगा बेतलब बंदों के पास, मैं कैसे सफर करूंगा, मैं कैसे खुरूज करूंगा, ये दावत की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें जितना भी मुजाहिदा पेश आएगा वो उतना ज्यादा दर्जे को बढ़ाने वाली चीज है, और जब बंदा आगे बढ़ता है तो अल्लाह पाक की तरफ से उसमें आसानी हो जाती है। अद्दीन युसरन का मतलब यही है, दीन आसान है, यानी अगर तुम करोगे तो करना आसान हो जाएगा, नहीं कर सकोगे ऐसा नहीं होगा। जब दीन की मोहब्बत हो अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो फिर अल्लाह के काम से आदमी को मोहब्बत हो जाती है, और जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी तकलीफ भी अच्छी लगती है। दर मोहब्बत तलखा शीरी बोवत, मोहब्बत में कड़वा हटे भी मीठी हो जाती, मोहब्बत में कड़वा हटे भी मीठी हो जाती, फिर अल्लाह तबारक व ताला के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना भी आदमी को गवारा हो जाता है। फिर ये नहीं होता कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ, जो काम अल्लाह पाक का है वो मुझे करना है। हक ताला शानहू ने मेरे दोस्तों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो जिम्मेदारियां लगाई हैं, उन जिम्मेदारियों में से जिसका इस वक्त हम खास मुजाकरा कर रहे हैं वो है अल्लाह के दीन की मेहनत की जिम्मेदारी। ये एक जिम्मेदारी है, ये एक फ़र्ज़ है अल्लाह पाक का, ये काम करना है हमको, सारी दुनिया के इंसानों तक जाके उनको दीन की बात पहुँचाना है। बात ऐसी शक्लें हैं मेरे दोस्तों कि उन तक दीन की बात पहुँचने की कोई सूरत नहीं है सिवाय हमारे जाने की। मस्जिद में हमारे खतीब साहब खुतबा दे रहे हों, कुछ लोग आए सुने दीन की बात ही सुनाएंगे, वो दावत ही करेंगे और क्या करेंगे वो, लेकिन जो आएगा वो सुनेगा ना, जो आएगा ही नहीं वो कहाँ से सुनेगा। किसी मौलाना साहब ने, किसी साहब ने बहुत अच्छा लिटरेचर तैयार कर दिया, बहुत अच्छी बुक लिख दी दीनियात के ऊपर, कोई आदमी पढ़ेगा तो उसका ईमान ताज़ा हो जाएगा, मगर वो उसी का तो ताज़ा होगा जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसका क्या होगा। इस वक्त उम्मत की एक बहुत बड़ी तादाद, यानी 90% उम्मत पूरी दुनिया में, हम आमतौर पर जब सफ़र नहीं करते तो ऐसा अंदाज़ा होता है कि जैसे हम मुसलमान हैं वैसे सब भी हैं, हमसे भी कोताहियाँ हो रही हैं, उनसे भी हो रही हैं, कुछ दिन पर हम भी अमल कर लेते हैं, कुछ वो भी कर लेते हैं, ऐसा समझ रहे नहीं। सफ़र करने पर पता चलता कि अपने को मुसलमान बोलने वाले ग्रुप में, बोलने वालों में कैसी कैसी हालतें लोगों में पाई जाती हैं। जिंदगियाँ गुजरेगा कभी अल्लाह रसूल का नाम लेने की नौबत नहीं आई, कभी मस्जिद देखने की नौबत नहीं आई, कभी नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने सजदा ही नहीं किया, कभी मस्जिद गए ही नहीं, कोई तलब नहीं रही, कोई रगबत नहीं रही, कोई चाहत नहीं रही, ना आखिरत जहन में रही, ना अल्लाह याद रहा, ना अल्लाह के रसूल याद रहा, ना अपनी कब्र की फिक्र है, ना जन्नत और जहन्नम की कोई तफसील सामने है, ना दीन पर चलने का कोई जज्बा शौक है, ना दीन की बात सुनने का, ना दीन की बात देखने का, ना दीन की बात पढ़ने का कोई शौक और शौक उसको नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों का कोई इंतज़ाम किया है या नहीं किया है इन लोगों के लिए, ये है। और उसकी क्या सूरत है, उसकी सूरत है बंदों का, जिम्मेदार लोगों का, जो दीन, जिनके पास दीन की फहम है, दीन का शऊर है, दीनदार है, दीन पर अमल करने वाले हैं किसी भी दर्जे में, उन लोगों की जिम्मेदारी वो जाए वहाँ पर इन बेतलबों तक जाना और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। दावत की, दावत के लिए खुरूज जरूरी है और दावत के लिए बेतलब के पास खुद जाना पड़ता है दाई को। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, हल नहीं है इसका कोई इसके अलावा। इसीलिए दावत का जो अपना खास मिजाज है, दावत का जो अपना काम है, इस वक्त पूरी दुनिया में बेतलब लोगों तक जाके उनको दीन की तरफ मुतवज्जे करना, इसका आज तक कोई सब्स्टिट्यूट वजूद में नहीं आया तबलीग का, कोई हल ही नहीं है इसका सिवाय इसके कि आप जाए, दूर है तो दूर जाए, करीब है तो करीब जाए, अपनी जुबान का है अपनी जुबान में जाए, नहीं है तब भी जाए, जाना ही जाना है, या फिर उसको जहन्नम का कुंदा बनने दे, छोड़ दीजिए। अगर उसको छोड़ दिए और उसकी फिक्र नहीं लिए तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी बहैसियत नाफरमान होने के हमारी तरफ उनसे भी पहले मुतवज्जे होती। ये अजीब सूरत हाल है, हम नमाजी हैं, दाढ़ी है, ये है, वो है, रोजा भी है, पाबंदी भी है, लेकिन दीन की मेहनत नहीं करते। तो दीन की मेहनत नहीं करने से दूसरे जहन्नम में जा रहे हैं और उसमें तलब भी नहीं रही, बात वहां तक पहुंच भी नहीं रही। तो हम अपनी जगह पर समझ रहे हैं कि हम नेक है, हम नेक है नहीं, हम गुनहगारों में एक बड़े गुनहगार के दर्जे में आ गए, बड़े गुनाह के दर्जे में आ गए, बड़े गुनहगार। और इसकी दलील वो हदीस शरीफ है जिसमें ये मजमून पाया जाता है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि फला बस्ती के लोग बहुत सब गुनहगार हो चुके हैं, उस बस्ती को पलट दो। अब अल्लाह इला जिब्राइल अलैहिस्सलाम अनिकलिब मदीना था कदा व कदा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही भेजी कि फला फला शहर को पलट दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए वहाँ पर, कहा या रब्बी इन्न फीहिम अब्दक फलान लम यअसी का तरफत आए, परवरदिगार इसमें आपका फला बंदा ऐसा है कि जो कभी नाफरमानी नहीं करा, इतना फरमा बरदार, हमेशा जिक्र फिक्र, पहले जमाने की बात है ये, जिक्र फिक्र में लगा हुआ है, पलक झपकने के बराबर कभी नाफरमानी नहीं कर रहा, ऐसा आप तो याद कर लेते बैठा हुआ है, ऐसा आपकी इबादत में लगा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पहले उसका घर पलट, वो भी समझ रहा कि मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूं, दुनिया भी देख रही है कि बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, जिब्राइल को तक ये अंदाजा है कि ये बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, और यकीनन उसके इस तकवा परहेजगारी का फायदा उसको आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात नाराजगी की है, एक नाफरमानी हो रही है उससे बहुत बड़ी, एक मासियत हो रही है बहुत बड़ी, और वो इतनी बड़ी मासियत है कि जब दुनिया में सजा का फैसला हुआ तो पहले उसके लिए सजा तजवीज हुई। इकलिबहा अलैहि, काला काला इकलिबहा अलैहि व अलैहिम, फरमाया पहले उसका घर पलट और फिर लोगों का घर पलट, पूरी बस्ती का घर। फरमाबरदारी मेरे दोस्तों, नेकी और फरमाबरदारी क्या चीज होती है, बंदगी क्या होती है, अल्लाह को पसंद आना, बंदा ये अल्लाह को पसंद हो, अपने हिसाब से हम अपने आप को कर लिए तो नहीं होता सारी सारा काम, हमारे जाहिर व बातिन से हम अल्लाह के पसंदीदा बनेंगे। वो कब बनेंगे, जब बनेंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी में ढल जाएंगे, अपनी मर्जी खत्म कर देंगे। और वो कब होगा, जो जिम्मेदारी उन्होंने लगाई, जैसे लगाई वैसे करना। तो एक दीन के जरूरियात में से, दीन के फराइज में से एक बहुत बड़ा फर्ज जो उम्मत की तरफ मुतवज्जे है बहैसियत मजमूई, वो ये है कि बेतलबों तक सफर करके जाना, बे आराम होना, उसके लिए वक्त लगाना, उसके लिए पैसा लगाना, उसके लिए अपनी हैसियत को छोटा बनाना, उसके लिए कौन पहचानता आप, जब आप जाओगे सफर करने के लिए तो आप कौन है, बड़े डॉक्टर साहब हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े मौलाना हैं, कौन जानता है, वो नहीं करेगा, वही आप उससे ये नहीं तवक्को नहीं रख सकते कि वो आपकी उस एतबार से शान रखेगा जिस हैसियत के अल्लाह पाक ने आपको बनाया है। वजाहत अता फरमाइए अपनी जगह पर। वो तो पैगंबर भी अगर जाते थे उन ऐसे लोगों के पास में, बेतलबों के पास में, तो पैगंबर से के साथ में भी बदतमीजी होती थी, बेउदगी होती थी, बेइकरामी होती थी, और जो जितने बड़े मर्तबे के थे उनको उतना ज़्यादा सताया गया। उज़ी तो फिल्ला हिमालम यूज़ अहद वक़ीफ़ तो फिल्ला हिमालम युफ़ अहद, मुझे सताया गया अल्लाह के लिए कि किसी को नहीं सताया गया, और मुझे डराया गया अल्लाह के रास्ते में, किसी को नहीं डराया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप जाते थे तो आपको तकलीफ दी गई, आप पर पत्थर मारे गए, आप पे थूका गया, आप पर गाली गलौज की गई, आपको साहिर और जादूगर कहा गया, आपके गले में चादर डाल के खींचा गया, आप पर ओझड़ी रख दी गई, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके पीछे लड़कों को लगा दिया गया सीटियां मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए, सब हुआ। और जिस शान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हबीबुर रब्बिल आलमीन हैं, सैयद बुलदे आदम हैं, वो थी तो इल्म अव्वलीन व आखिरीन की शान आपकी है, आप शाफ़ी महशर हैं, साकी कौसर हैं, लिवाउल हम्द बियदी उनकी शान है, आप अंदाज़ा फरमाएं, साहिबुल मेराज वल बुराक, इतनी बड़ी शान वाले पैगंबर हैं, लेकिन जब दीन की मेहनत फरमा रहे हैं तो उनके साथ जो सलूक सामने वाला कर रहा है वो तो जाहिर है कि वो जानता नहीं इसको। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा और शान है वो अल्लाह ने ही बयान फरमाई बाद में, जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए सरकार, जब सहाबा मानने वाले तैयार हो गए, ईमान वाले तैयार हो गए, तो फिर बताया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, आपकी शान क्या है। ये फरमाया कि अगर इनसे बात करना है तो सदका दे के जाना पड़ेगा पहले, इदा नाजी तुम रसूल फकद्दिमु बैने यदै नजवाकुम सदका, मुलाकात करने के वास्ते पहले सदका करो तो तुम मुलाकात के काबिल बनोगे। इनसे मुलाकात करना है तो दस्तक नहीं दे सकते, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइ अल-हुजुरात अक्सरुहुम ला याकिलून, बेअकल हैं जो जाके आवाज़ देते हैं कि आओ जरा बात करना है आपसे, वलव अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम, सबर करें यहाँ तक कि आप खुद ही आप तशरीफ लाए फिर जब मुलाकात करना, ये तुम्हारे लिए बेहतर। ये सारे हुकूक जो बयान किए गए कुरान पाक में जगह जगह अलग अलग, ये सारे ये शान हुजूर की पहले से ही है, ये थोड़ी है कि अब तय हुई ये शान, आपका आपके आपकी ये शान और आपके बारे में ये अदब और तमीज़ और सलीका पहले से है। मगर ये है कि जब दावत का मामला सामने आया तो जो नहीं जानने वाले लोग हैं उन लोगों की तरफ से तो ऐसी कोई बात पेश नहीं आएगी इज्जत एहतराम की, मगर उसकी वजह से काम नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं होगा, काम फिर भी करना। इसलिए मेरे भाइयों एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने हमें दीन की अता फरमाई है, और वो है दीन की मेहनत में हिस्सा लेना, पूरी दुनिया में जाना और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की अजमत उनके सामने सुनाना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी पैगंबरी लोगों के सामने रखना, आपकी पाकीज़ा सीरत, ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी किस रास्ते में रखी है, और लोगों को आखिरत से वाकिफ कराना, और बिलखसूस ये गैर मुस्लिमों से पहले मुसलमानों में करना पड़ता है, गैर मुस्लिमों को बिरादरान मुल्क को पूरी दुनिया के इंसानियत को करने की समझाने की जिम्मेदारी भी मुसलमानों की है। हम इससे अभी सुबुकदोश नहीं है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास हमारे लोग बहुत पड़े हुए हैं वो नहीं है हमारे जिम्मे, वैसा नहीं है वो, लेकिन बहरहाल अव्वल आखिर का मसला मुकदम मुखर का मसला हो जाता है। वो ये है कि वो अभी दीन पर आने में यानी वो चूंकि दीन पर नहीं आए तो ज़बरदस्ती नहीं है उन पर, अभी जो दीन पर आ गया उस पर ज़बरदस्ती है, जो दीन में आ गया उस पर जबर है, उसको माफ़ी नहीं है। भाई जब तू ईमान कबूल कर चुका है फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ता, जब ईमान कबूल कर चुका है तो दीन पर चलता क्यों नहीं, हलाल हराम का फ़र्क क्यों नहीं करता, तो वो एक जिम्मेदारी ऐसी होती है कि आदमी ईमान ला चुका है लिहाजा वो पहले मरहले में होगा। वो इस वजह से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उन तक मुलाकात के लिए पहुँच जाना, और उसके लिए जो पैसा लगता है वो पैसा लगाना, जो वक्त लगता है वो वक्त लगाना, और उसकी जो तरतीब हमसे हो सकती है उस तरतीब में हिस्सा लेना, मेरे दोस्तों ये हमारी ज़रूरियात में से, हमारी जिम्मेदारियों में से, और ये चीज़ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ाते आली के यकीन को बनाती है। एक काम इसका ये भी है, एक फ़ायदा इसका है, इसका ख़ास फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह का ताल्लुक ऐसे बंदे को नसीब होता है जो इस मेहनत को करेगा। इसका ख़ास फ़ायदा ये होता है कि जब बंदा अल्लाह के ईमान की तरफ कमाल ईमान की दावत देगा तो इसके नाकिस ईमान को अल्लाह पाक कामिल करेगा। जिस काम को लेकर बंदा इंसानों में फिर रहा है उस काम की रुख से खास तौर पर अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएंगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह की मदद के लेने का यकीनी रास्ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की मदद करने वाले हो जाओ। तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक इखलास के साथ बंदा मेहनत करे और अल्लाह पाक उसकी मदद ना फरमाए, ये नहीं हो सकता। कुरान में जो कहा गया वो पूरा होता है। हक तआला शानहू ने एक जिम्मेदारी भी दी, उसके साथ साथ अल्लाह पाक ने इसके लिए इतना बड़ा एहसास दिया कि ये चूंकि ये मेरी मदद करार दे दूंगा इसको, चूंकि मेरे बंदों का काम है। अल्लाह पाक की एक शान ये होती है कि उनकी मखलूक के साथ में स्पेशल मामला जब कोई इखलास के साथ करता है तो अल्लाह पाक उसको अपने ही साथ वो मामला करार दे देते। आपने सुना होगा कि हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे, ऐ बंदे मैं भूखा था तू मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा कि परवरदिगार आपके साथ सुभान है, आप पाक हैं, आप खाते पीते नहीं हैं, आप ये कैसे फरमा रहे कि मैं आपको खाना नहीं खिलाया। फरमाया कि मेरा फला बंदा भूखा था, वो मेरा वली और मेरा नेक बंदा वो भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाता तो आज मैं यही कहता कि तूने मुझे खिलाया, मुझे कपड़े नहीं पहनाए तूने, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, यही जवाब होगा। मैं बीमार हो गया था तो मेरी मिजाज कुर्सी को भी नहीं आया। अल्लाह पाक फरमाएंगे बंदे से, मैं बीमार हो गया था तो मेरी मिजाज कुर्सी को भी नहीं आया। कि आपकी जात पाक है, आप कहाँ बीमार होते हैं। फरमा के अगर फला बंदे की तो यादत कर चुका होता तो यूं यूं करार दिया जाता, यूं समझा जाता कि तूने आज मेरी मिजाज कुर्सी की। तो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को जब हिदायत की दावत, जब हिदायत की तरफ बुलाया जाता है, जब दीन की तरफ बुलाया जाता है, जब दीन का काम उनमें किया जाता है, तो अल्लाह पाक उसको अपना काम करार देकर अपनी मदद फरमा रहे। जैसे आपके बच्चे के साथ कोई सलूक कर दिया, पानी में डूब रहा था, किसी ने उसको बचा लिया, तो बच्चे के साथ तो सलूक हुआ ही हुआ, पेरेंट्स क्या बोलते साहब, हम हमारे ऊपर आपका एहसान ऐसा है कि हम जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे, हम जिंदगी भर याद रखेंगे, तो आपने हमारे साथ एहसान किया, तुम्हारे साथ तो नहीं किया, तुम्हारे बच्चे के साथ किया। लेकिन उनके बच्चे के साथ उनका ताल्लुक इतना गहरा है कि उन बच्चे के साथ करना उनके साथ करने के ही माना में हुआ। वो ऐसे अल्लाह पाक अपनी मखलूक पर की जाने वाली खिदमत को, काम को अपना काम फरमा रहे, उनकी मदद को अपनी मदद फरमा रहे। और फरमाया तुम मेरी मदद करने वाले हो जाओ, कुनु अंसार अल्लाह। और ये भी फरमा रहे हैं आगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को अल्लाह की मदद के लिए पुकारा था तो वो खड़े हो गए थे, तुम तो मुहम्मदी हो, अगर ईसवी खड़े हो सकते हैं तो मुहम्मदी क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? इनकी तो शान अलग है, इनके तो हौसले अलग हैं, इनके तो सिफात अलग हैं, इनके तो खसूसियात अलग हैं, इनकी मुराआत अलग है, इनके बेनिफिट्स अलग हैं। और ख़ास बात एक ये भी होती है कि इनका जज्बा और मिजाज, रूहानी कुव्वत अलग है, क्योंकि रूहानी कुव्वत और मिजाज और जज्बा इसके अंदर वक्त जो जिस नबी की ये उम्मत होती है उसके असरात होते हैं। जो रूहानियत होती है, जो नूरानियत होती है, जो जज्बे हुआ करते हैं, जो हिम्मतें हुआ करती हैं, वो नबी का फैज़ होता है। तो जिस नबी की उम्मत है उस नबी का फैज़ है। तो ईसवी होने में और मोहम्मदी होने में जो फ़र्क है वो समझना है। यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मांगा, लोगों को पुकारा, कमा قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله, तो ये जो अल्लाह पाक ने हवाला दिया है कि जैसे उन्होंने कहा तुम तो मोहम्मदी हो, तुम तो अल्लाह की मदद करने वाले हो जाओ, इसके पीछे का जो मैसेज है वो लेने वाली बात है। तुम्हारे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है ये काम, तुमको तो करना ही करना है, तुम तो कर ही सकते हो ये, क्योंकि तुम देखो तो सही तुम्हारा पावर हाउस कौन सा है, तुम देखो तो सही तुम्हारा कनेक्शन कहां से है, तुम्हारे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं। इस वजह से मेरे दोस्तों ये एक काम है जो हमें करना है कि दीन की मेहनत में हम हिस्सा लेंगे अपनी मसरूफियत के बावजूद। इसकी बड़ी फजीलत अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इतना शौक दिलाया, इतना शौक दिलाया, इतना शौक दिलाया सहाबा को दीन की मेहनत के लिए कि कोई सहाबी अपने घर पर रहने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जी कुरान पाक में है ये बात, सहाबा का हाल ये हो गया था कि कोई रहना ही नहीं चाह रहा था। तो अल्लाह ने फरमाया कि सारे चले गए तो कैसा, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वाली जो आयत है, इस आयत के मतलब में ये बात लिखी हुई है कि जब सब सहाबा जाने लगे तो अल्लाह पाक ने थोड़ों को रुकने को फरमाया कि सब चले गए तो ये काम कौन करेगा भाई। इतना शौक उनमें आ गया था, हालांकि उनके साथ में भी बीवी बच्चे, उनके साथ में भी कारोबार, उनके साथ में भी जरूरियात, उनके साथ में भी हाजतें, सब चीजें, लेकिन उसकी फजीलत उतनी थी, उसकी अहमियत इतनी थी, उसका नफा इतना था, अल्लाह का कुर्ब उसे इतना मिल रहा था, अल्लाह इतने ज्यादा उससे खुश हो रहे, क्योंकि जिससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसकी फजीलत बहुत होती है। हजरत साहबा को ऐसा चस्का पड़ गया इसका, अल्लाह के रास्ते में जाने का, अल्लाह के रास्ते की मशक्क़त बर्दाश्त करने का, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को खपा देने का, अपनी जान कुर्बान कर देने का, अपनी जान को अल्लाह पाक के हवाले कर देने का, क्योंकि उस वक्त की जो सिचुएशन थी उसमें इसकी नौबत भी आती है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए बस एक जज्बा था उन लोगों के लिए। अल्लाह पाक ने खुद ही फरमाया भाई लौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, ये जो गए हैं इन लोगों को कुछ बोलना बताना भी पड़ता है, जब वो वापस आएंगे तो तुम लोग इसके लिए प्रिपेयर रहो, तैयारी करो, इल्म हासिल करो, आलिम बनो वगैरह वगैरह, तफक्कु हासिल करो, इसकी तरगीब दी गई है तो इस मौके पर दी गई है।
और अगर ना करे बंदा तो वईद भी वैसे। अगर हम जैसे हमारे अहवाल हैं, हम अपनी मजबूरी में, अपनी तंगियों में, सबसे बड़ी चीज़ अपने बेखबरी में, इल्म नहीं होने से। क्योंकि हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह ताला ऐसे नहीं हैं कि अगर इसकी अहमियत जैसी होनी है वैसी हमारे जहन में आ जाए, हदीसों के ऊपर गौर करके, आयतों पर गौर फिक्र करके इसका मतलब अगर हम समझ लें तो हम इसमें वक्त नहीं लगा सकते, पैसा नहीं लगा सकते। वैसी बात नहीं है, ये दीनदार तबका बैठा हुआ है, हमारी बेखबरी है, हम जानते नहीं हैं इस बात की अहमियत को। अगर इसमें हमसे कोताही हो गई मेरे दोस्तों, तो जो वईदें हैं नाकाबिले तसव्वुर हैं। सारी मुसीबतों का, सारी मुसीबतों का इस वक्त जो सबब है वो उम्मत का दीन की मेहनत नहीं करना ही है। पूरी दुनिया के मुसलमानों पर उनका रिफ्यूजी होना, उनका कत्ल किया जाना, उनका लूटा जाना, उनका मारा जाना, उनका तबाह बर्बाद होना, उनके बड़ों का शहीद होना, उनके बच्चों का जख्मी होना, शहीद होना। पूरी दुनिया भर में जो मुसलमान सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी इस वक्त कौन है? मुसलमान है। 8 करोड़ से ज़्यादा रिफ्यूजी पूरी दुनिया में फिर रहा है, 90% उसमें मुसलमान है, उससे भी ज़्यादा है, 90 तो बहुत कम बोल रहे हैं। अगर अपनी खुशी से अल्लाह के रास्ते में जाने की नौबत आती तो ये मजबूरी में दर दर फिरने की नौबत उम्मत को नहीं आती। खुशी से मुजाहिदा जब नहीं करती उम्मत तो नाखुशी वाले मुजाहिदे में फंस जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई है कि दीन की मेहनत ये उम्मत नहीं करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको सजा देगा, आखिरत में भी देगा। इसका यह मतलब नहीं होता कि चूंकि हम ये सोच रहे कि हम भी नहीं कर रहे मगर हमको तो नहीं दे रहा। अल्लाह ताला की आदत ये होती है कि उनको देखे तुमको सबक दे रहा है, कहते तो अगर तुम संभलना चाहो तो संभलो, नहीं तो तुम पे भी आ सकती मुसीबत। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं हर हर फर्द को अलग अलग से हिसाब किताब में डालेंगे, वैसा नहीं होता। इज्तमाही मामले वैसे नहीं हुआ करते। दुश्मन मुसल्लत कर देंगे, दुश्मन मुसल्लत है नहीं है मुसलमानों के ऊपर। जब तुम दीन की मेहनत नहीं करोगे तो दुश्मन मुसल्लत होगा और रहम भी नहीं करेगा तुम पर। और दुश्मन बोलते हैं उसको जो आपकी खैरखाही ना करे, बदखाही करे, ना आपके औरतों के साथ खैरखाही करेगा, ना आपके बच्चों के साथ करेगा, ना आपके साथ करेगा, ना आपकी प्रॉपर्टी के साथ करेगा, ना आपके उसूल खवानीन के साथ, किसी चीज़ के साथ में भी नहीं करेगी। खामखा उसे भीख मांगना खुद ही गलत है। मिन्नत से माजत कर रहा हूँ मुसलमान के, तो हमारे साथ ये कर, तो हमारे साथ वो कर, पागल है। जब दुश्मन है तो क्या एक्सपेक्टेशन है उसके साथ? दुश्मन मुसल्लत हो जाएगा। और ये जो दुनिया की बेबरकती है, परेशानियाँ हैं, वो अपनी जगह पर। तो इसलिए मसरूफ़ भी हैं हम, और हमारे साथ हम ज़रूरतें भी लगी हुई हैं, बीवी बच्चों वाली ज़िंदगी है हमारी, और बहुत तंगियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ज़्यादातर मेरे दोस्तों दीन की मेहनत नहीं करने का सबब हमारा ये मशगूल होने का जो बहाना होता है, ये शैतान की तरफ से हमारे जहन में डाला हुआ होता है, रियलिटी में नहीं होता, हकीकत में नहीं होता। बहुत हकीकी एतबार से अगर कोई मजबूरी है तो वो लाखों में किसी किसी को हो सकती है कि वाकईतन ये बंदा निकल ही नहीं सकता। और उसके हालात जब जिम्मेदारों के सामने आएंगे तो वो खुद ही बोलेंगे कि भाई आप न मत निकलना। अब एक आदमी के एक फ़र्ज करो एक औरत माँ है उसके साथ में, और वो भी बीमार है, और उसकी कोई दूसरी खिदमत करने वाला नहीं है, ना उसको किसी रिहैब सेंटर में डाल सकते, ना बुढ़ों के ओल्ड एज उसमें डाल सकते, कहीं दवाखाने में नहीं जा सकती, कोई और ऐसी सूरत है जिसके अंदर उसको उसकी खिदमत का मसला है, वो एक दिन के लिए भी नहीं, चंद घंटों के लिए भी नहीं निकल सकता। इस किस्म की मजबूरी जब पेश आएगी तो कौन कहेगा कि तू जा भाई जमात में? नहीं, मजबूरी जो है ना ये शैतान ने हमें दिखाया हुआ है, ये हकीकी मजबूरी होती है, ऐसा कम किसी के साथ होता है। जो असल जो हमारी जो है वो फर्जी मजबूरी है हमारे जहन, ये कुरान पाक में है कि शैतान ऐसा दिखाता है आपको। उसकी दलील सबसे बड़ी है कि जितने इस वक्त जमातों में फिर रहे हैं उनकी फीलिंग भी वही थी जो हमारी है। वो भी यही समझ रहे थे कि मैं 3 दिन नहीं निकाल सकता, मैं चंद घंटे भी नहीं निकाल सकता, मैं मजबूर हूँ, मैं इतना बिजी हूँ, इतना बड़ा मैं कारोबारी हूँ, मैं ऐसा बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा काल पे रहता हूँ, मेरा बिजनेस इतना फैला हुआ है, 4 तो फ़ोन मुझे हर वक्त लगे हुए रहते हैं, मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकता, लेकिन 4-4 महीने के लिए फिर रहे ये लोग। पहले 3 दिन गए तो उनका क्या इसमें कुछ भी नहीं हुआ, फिर 10 दिन चले गए फिर भी पता चला कुछ भी नहीं हुआ, फिर 40 दिन चले गए पता फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, फिर 4 महीने के चले गए, पता चला फिर भी कुछ नहीं हुआ। खामखा एक फर एक एक हवा था जो सर के ऊपर मुसल्लत था कि ये नहीं कर सकता। हमारे साथ में भी ऐसे ही, अगर हम हिम्मत करेंगे आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक रास्ता निकालेगा और हमारे लिए थोड़ा वक्त भी आसान होगा, ज़्यादा वक्त भी आसान होगा। अगर हम हिम्मत करेंगे तो आप देखेंगे कि हम जिस सेहत के बारे में गुमान कर रहे हैं कि मैं इस सेहत के साथ में नहीं कर सकता कुछ भी, आप महसूस करेंगे कि नहीं, बंदा इस सेहत के साथ में भी कर सकता है। अगर आप बोलेंगे कि इस नॉलेज के साथ में मेरे को तकरीर करना नहीं आता, मेरी नॉलेज कम है, फिर आप देखेंगे कि फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से काम ले लेगा। अगर आप यानी ये महसूस करते हैं कि साहब मैं खुद ही बहुत गुनहगार हूँ, मैं खुद किसी को क्या बोल सकता हूँ, मेरे दोस्तों, फिर भी आदमी ये महसूस करेगा, अरे बोलने से बड़ा फ़ायदा होता है यार, खुद अपने को भी तौबा की तौफीक हो जा रही बोल के। चूँकि ये नहीं है कि अगर बाप सिगरेट पीता है तो बेटे को नहीं बोलेगा कि साहब तू सिगरेट मत पी, चूँकि खुद ही पी रहा है, नहीं बोलेगा कि मैं तो पी रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, तू मत पी, बोलेगा तो फिर भी बाप जिम्मेदारी तो फिर भी है। अगर हम दीन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमको दीन की बात करनी है, दीन की मेहनत करनी है, ताकि दीन पर अमल करने की जिम्मेदारी। अगर तुम दीन पर अमल नहीं करते तो दीन का काम ना करो वैसा नहीं है, दीन का काम करने वाले को दीन पर अमल करने की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है कि जब तुम दीन का काम कर रहे हो तो दीन पर अमल भी करो, लेकिन अगर किसी वजह से दीन पर अमल नहीं कर रहे तो दीन का काम ना करो ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि करना है। बल्कि यह फरमाया गया कि तुम दीन का काम करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। सबसे पहली बशारत गुनाह के माफ करने की है। गुनाह के माफ करने की क्या मतलब? अगर तुम बहुत गुनहगार हैं तो सबसे पहले ये काम करो, जो पहली चीज गुनाह के माफ होने की है, पहली बशारत ये है, पहले यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो गुनाह माफ होने। अगर हम गुनहगार हैं तो फिर तो हमको करना ही करना है, चूंकि अल्लाह पाक गुनाह माफ करते हैं इसके जरिए से, कोई शक्ल से नहीं है जिससे हम मेरे दोस्तों एक्सक्यूज कर सकें और हम रास्ता बचा लें अपना। हमें दीन की मेहनत मेरे दोस्तों करनी है, इसके बड़े फजाइल हैं, अल्लाह पाक इसको इससे महबूब बना लेते हैं अपना। जो खैर इसके ज़रिए से वजूद में आता है सब में इसको शरीक कार कर देते हैं, सवाब अता फरमा देते हैं। जो पैसा इसका लग गया उसको एज ए बिजनेस तिजारत में शामिल कर लेते हैं, जो वक्त लग गया उसको अल्लाह पाक इसको तिजारत में शामिल फरमा लेते हैं। इस रास्ते में बुखार आए आदमी को तो उसका सवाब अलग है, चोट लग जाए तो उसका सवाब अलग है, तकलीफ पहुंचे तो उसका सवाब अलग है, लोग न माने बात तो उस पर जो मशक्क़त पेश आती है उसका सवाब अलग है, बात पहुंचाने का सवाब अलग है, किसी ने बात कबूल कर ली उसका सवाब अलग है, कबूल करके नेकी पे पड़ गया उसका सवाब अलग है। सवाब ही सवाब है, यहाँ रास्ते में जाए आदमी तो जिस रास्ते से जाता है उसका सवाब है, रास्ते में जब आदमी जाता है तो उसके जानवर जिस जानवर पर सवार होके गया है उस सवार ने जितना रास्ता तय किया उसका सवाब है, उसने जितना घास खाया उसका सवाब है, उसने जितना लीड किया उसका भी सवाब। आप अंदाजा फरमाइए क्यों है ये? अल्लाह के यहाँ ये बहुत ही महबूब अमल है, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ने कुछ ऐसी बनाई है कि जब तक हक उसके तक पहुंचेगा नहीं वो हक को लेगा नहीं। तो एक सुन्नत अल्लाह पाक की ऐसी है कि दारुल असबाब होने की हैसियत से जो निज़ाम होना चाहिए वो इस तरीके से चूंकि वजूद में आता है, इस वजह से अल्लाह पाक ने इसकी फजीलत वैसे बयान फरमाई। वईदें भी ऐसे ही हैं, इसलिए मेरे दोस्तों ये जो इज्तिमा अपना आ रहा है, इस इज्तिमा से थोड़ा सा पहले भी थोड़ा सा बाद में भी इज्तिमा में भी हमारी मेहनत लग जाए और इन जनरल हम अपनी दुनियावी मसरूफियतों के साथ साथ दीन की मेहनत करने वाले हों, इसके लिए अपना सबसे पहले जहन बनाना ज़रूरी है। हर आदमी ये सोचे कि नहीं मुझे करना ही करना है। उलमा ने यहाँ तक फरमाया है, हज़रत मौलाना आलिम साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जब आए थे 80s में, उन्होंने अपनी तकरीर में साफ तौर पर MCC में फरमाया था, उन्होंने फरमाया था कि अगर तुम यहाँ रहकर दीन की मेहनत करोगे तो तुम्हारा यहाँ रहना जायज़ है वरना हराम है। अगर यहाँ रहकर तुम दीन की मेहनत नहीं करोगे तो यहाँ रहना तुम्हारा हराम है। और ये समझने में कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं समझ में आती, थोड़ी सी मेहनत नहीं करे तो घरों का माहौल देख लो कैसा है, बाहर का माहौल देख लो कैसा है, अपनी औलादों को देख लो कैसा है, अपनी बच्चियों और बच्चों का हाल देख लो कैसा है। तो अपनी बच्चियों बच्चों को जानबूझकर काफिर और फासिक तो नहीं बना सकते ना, कुफर के माहौल में तो नहीं ढकेल सकते ना। फरमाया अगर तुम दीन की मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा यहाँ रहना हराम है, अगर तुम दीन की मेहनत करोगे तो ही तुम्हारा यहाँ रहना जायज़ है। क्यों? उन्होंने कुछ देखा अपनी आंखों से, वो कुछ महसूस कर रहे थे इस बात को। मेरे दोस्तों इसलिए अपनी तमाम मसरूफियतों के बावजूद ये सबसे पहले आदमी को नियत करना होता है, जहन बनाना होता है कि मुझे इस काम को करना है। कैसे करना है, मैं कैसे काबू में लाऊंगा, मेरे अपने हालात ऐसे हैं, रखो अपने साथियों के सामने जिम्मेदारों के सामने, तफक्कुद अहवाल बोलते हैं इसको, वो प्रोग्राम बनाएंगे उसका, वो तय करेंगे कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं आप वैसा कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें शुरू में समझ में नहीं आती, इसलिए इन फजाइल को जहन में रखते हुए अपना ईमान यकीन बनाने के लिए, अल्लाह पाक की ज़ात आली का यकीन अपने दिल के अंदर मुस्तहकम करने के लिए, अल्लाह पे भरोसा सीखने के लिए, اللہ نے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس زندہ پہ بھروسہ کر جو مرتا نہیں ہے. کتنا بڑا جملہ ہے میرے بھائی, اس پہ بھروسہ سیکھنا ہے. وہ ہمارا رب ہے, وہی پالنے والا ہے, وہی ہمارے ہر چیز کا مالک وہی ہے, نفع نقصان کا مالک وہی ہے. انشاءاللہ اگر ہم اس کی ذات عالی پہ نظر کر کے اس کے حکم پر لبیک کہیں گے اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے, ذمہ داری کو پورا کریں گے, اللہ پاک ہماری بھرپور مدد فرمائے گا. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی اللہ پاک مدد نہیں فرمائے گا, سب کی مدد فرمائے گا. دنیا کے اندر بھی اللہ پاک کی مدد شامل ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی. آخرت میں تو کہنے ہی کیا ہے, ہمارے نیارے ہو جائیں گے, قسمت ہماری چمک جائے گی. اس لیے سب ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی توفیق سے جائیں گے اور ایک ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. ایک مسلمان کا تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بے دین ہیں سب کو ایک مرتبہ تو ان کے سامنے اللہ کی بڑائی سنا دوں. یہ جذبہ آدمی کو بنانا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ان کے سامنے رکھ دوں. اس لیے میرے دوستو ہمت اور حوصلہ کرو, اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کرو, اپنے ارادوں کا اظہار کرو. تمام بھائیوں سے درخواست ہے, بڑوں سے, چھوٹوں سے, بزرگوں سے.